الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام پہلی بات نیت کے استحضار کے متعلق عرض کرنی ہے. کہ یہ دو دن کے تربیتی تدریبی پروگرام میں آپ حضرات جو تشریف لائے ہیں اور اس میں مختلف مجلسیں ہو رہی ہے، ان میں ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ نیت یہ ہو اللہ کی کتاب قرآن مجید صحیح پڑھنے اور پڑھانے کی جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو نبھانے کا طریقہ ہمیں سیکھنا ہے. جب اس نیت کے ساتھ ان مجلسوں میں شرکت کریں گے تو چار فضیلتیں حاصل ہوگی جو سنتے رہتے ہیں، حفتہم الملائکہ، غشیتہم الرحمہ، یہ سب چار فضیلتیں جو حدیث میں آئی، فضائل قرآن میں بھی حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں تفصیل سے وہ روایت نقل کی ہے. اس لیے آپ حضرات اپنی نیتوں کو مستحضر کر لیں کہ صحیح قرآن پڑھنا، صحیح قرآن پڑھانا، اس ذمہ داری کو ہم کیسے اچھی طرح نبھاویں، اس کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں. بلکہ میں تو آپ سے ایک درخواست یہ بھی کروں گا کہ روزانہ جب آپ بچوں کو پڑھانے کے لیے بیٹھے گھر پر، مکتب میں، مدرسے میں، تب یہ نیت آپ کر رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں قرآن کے حلقے میں جا رہا ہوں، یہ حلقہ قرآن ہے، اور حلقہ قرآن پر فضیلت ہے. وہ حدیث شروع یہاں سے ہوتی ہے، یتدارسون القرآن، پھر فضیلت ہے عفتہم الملائکہ وغیرہ. تو روزانہ یہ کام کر لو، یعنی کہ بھائی ملازمت ہے، نوکری ہے، इसीलिए हम लोग मदरसे में जा रहे हैं, ट्यूशन है, फीस लेनी है, बच्चों को पढ़ाना है, ये नियत हरगिज नहीं। ये कुरान के हलके हैं और कुरान के लिए लोग जब जमा होते हैं और कुरान का आपस में सीखना सिखाना होता है तो चार फजीलतें उनको हासिल होती है। रोजाना आप लोग ये नियत करेंगे तो रोजाना आपको ये चार फजीलतें हासिल हो जाएंगी। ये इस्तेहजार नियत बहुत अहम है। देखो एक बात मैं आपको अर्ज करूं, हमारे अंदर यकीन क्या होना चाहिए कि हम जिस काम में लगे हुए हैं दुनिया में सबसे अच्छा यही काम है, इससे अच्छा कोई काम हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ हमारी जुबान पे न होए, जलसों की अलाउंसरी में न होए, जलसों की रिपोर्टों में न होए, तकलीफ हमको इस बात की है कि हमारे हुफाज, उलमा, मुदर्रिसीन, अइम्मा इस हदीस को उन्होंने सिर्फ जबानी हद तक बाकी रखा है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लमा, पहले खुद यकीन पैदा करो अपने अंदर कि कुरान की तालीम और ताल्लुम का जो काम हम लोग कर रहे हैं इससे अच्छा काम दुनिया के अंदर कोई हो ही नहीं सकता। अल्लाह की नजर में सबसे अच्छे काम में हम लोग लगे हुए हैं, इसका यकीन अपने दिल दिमाग में पैदा करो। इसकी बड़ी कमी है। अब इसके दलाइल है कि कमी है यकीन की, मुदर्रिस देर से आता है, जल्दी चला जाता है, सबक के वक्त के अंदर मोबाइल पर लोगों से बातें करता है, व्हाट्सएप देखता है, बच्चों को पढ़ाया ना पढ़ाया, खाना पूरी करता है। ये दलील है किस चीज की, कि अपने काम को सबसे अच्छा काम समझ नहीं रहा है। इसकी दलील है ये। अगर अपने काम को सबसे अच्छा काम समझता कि मैं अल्लाह की नजर में सबसे अच्छा काम कर रहा हूं तो वो मदरसे के मुकर्ररा वक्त से पहले आता और मुकर्ररा वक्त के बाद जाता है, क्योंकि वो मिनट मिनट और सेकंड सेकंड के सवाब की गिनती लगाता है, अज्र की गिनती लगाता है। और मदरसे के वक्त के दरमियान के अंदर चाहे बीवी का फोन आवे या बाप का आवे या बिजनेस पार्टनर का आवे, किसी का भी आवे, ये मेरा वक्त है मदरसे का। इस वक्त मेरी पूरी तवज्जो कुरान पढ़ने पढ़ाने में है, मुझे पेशाब का तकाजा भी न होता, भूख भी न लगती, नाश्ते का एहसास भी न होता। इसलिए ये यकीन अपने अंदर पैदा करने की जरूरत है कि हम जो काम करते हैं कुरान पढ़ने पढ़ाने का, अल्लाह के यहां इससे अच्छा कोई काम हो ही नहीं सकता। जब ये यकीन होगा तो बहुत से मसाइल खुद बखुद हल हो जाएंगे ऑटोमेटिक। ये चीज ज़हन में रखो। तीसरा फायदा क्या होगा, आजकल हमारा तबका एहसास कमतरी में बहुत मुब्तला है और उसका खात्मा जरूरी है। किसी डॉक्टर को देखेंगे, डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, फिर भाई तुम उन सब साहबों के बड़े साहब हो, तुम कुरान के खादिम हो, उनको और उनकी गाड़ी और उनके बंगले और उनकी ऑफिस को क्या रश्क की नजरों से देखते हो। तुम जिस चटाई पर बैठ करके पढ़ा रहे हो बच्चों को कुरान, उस चटाई का एक एक धागा उसके तकद्दुस पर मलाइका रश्क करते हैं। कोई मामूली काम है आप लोगों का, एयर कंडीशन ऑफिस होवे, 8-10 स्टाफ होवे, मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू कार में साहब आते होवे, आप है कि साइकिल पे चले गए, पैदल चल के पहुंच गए, रिक्शा में चले गए, बस में चले गए, पुरानी टू व्हीलर पर चले गए, चटाई पर बैठ के पढ़ा रहे, हो सकता है पंखा भी ना हो सकता है दरख्त के नीचे पढ़ा रहे हो, ओटे पर बैठ के पढ़ा रहे हो, लेकिन जब ये यकीन होगा कि मैं जो काम कर रहा हूं अल्लाह की नजर में इससे अच्छा कोई काम नहीं हो सकता, तो फिर कभी इनकी गाड़ियों पर, इनकी ऑफिसों पर, इनकी आमद और रफ पर हम रश्क की नजरें नहीं डालेंगे। और इससे तो कुरान ने हमको मना किया है, ऐसे दुनिया परस्त लोगों की चीजों पर रश्क की निगाहें डालना। ला तमुद्दन आइनैक इला मा मत्तअना बिही अज़वाजम मिनहुम ज़हरतल हयातिद दुनिया, नजर उठा के भी देखने की इजाजत नहीं है। देखो कितना बड़ा हुक्म है, जिनको दुनिया की रौनक का सामान हमने दिया, दुनिया की मौज मजे व अय्याशी के सामान दिए, उनकी तरफ नजर उठा के देखने से भी अल्लाह ने मना फरमाया। ला तमुद्दन आइनैक इला मा मत्तअना बिही, हमारे हजरत मौलाना इस्माइल साहब हम दोनों पूरे दौरे तक दरस में साथ रहे, दरसी साथी भी है। शरीफ विकाह में हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना सुलेमान साहब चौकसी दामद बरकातहुम एक बात फरमाते थे, उस जमाने में मदरसे में कार आवे बहुत नवाई की बात होती थी, नई अनोखी बात। अब तो माशाल्लाह मुदरिसिन कार लेके पढ़ाने आते हैं, उस दौर पर हम पहुंचे। कभी कोई बड़े सेठ साहब आ जाए मदरसे में कार लेकर, तो मदरसे में हमारे यहाँ डाबेल में मस्जिद के सामने आमतौर पर वो कार पार्क करते हैं, उससे पता चलता है आज कोई आया हुआ है। तो तलबा असर के बाद निकले तो वो रश्क की निगाहों से वो कार देखे, तो हमारे उस्ताद मोहतरम ये फरमाते थे कि किसी को भी जो मैंने देखा कि उसकी कार के आजू बाजू खड़े होकर ललचाई निगाह से देख रहे हो, मैं वहीं सपाटे मारूंगा। ये तरबियत थी उनकी कि तुम्हारा उनकी गाड़ियों को ललचाई निगाहों से देखना ये नऊज़ बिल्ला कुरान की हकारत है। कुरान की जो नियामत खुदा ने आपको दी आप उसकी तहकीर कर रहे हो अपने अमल से। एक तरफ तो कह रहे हो कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, दूसरी तरफ उनकी तरफ ललचाई निगाहों से देखते हो, ताकीर है कुरान वाली नेमत की है। इसलिए ऐसा से कमतरी से बाहर निकलो। हम जो काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में अल्लाह की नजर में इससे अच्छा कोई काम हो ही नहीं सकता, इसका यकीन हमारे दिल दिमाग में और हमारे अमल से जाहिर होना चाहिए। और जब ये यकीन आएगा तो एक खास बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ जिसमें इस वक्त हमारा तबका मुब्तला होते जा रहा है और परेशान होते जा रहा है, वो ये है कि इस यकीन की कमी की वजह से हमको दुनियावी कारोबार के शुगल ने परेशान कर रखा है। وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ یعنی اس کی نوعیتیں الگ الگ ہوتی ہیں، یاد رکھنا ہے ایک ہی نوعیت نہیں ہے اس کی، کہ شیطان ان کے اعمال مزین کر کے دکھلاتا ہے، الگ الگ نوعیت ہے. ہمارے لیے، ہمارے طبقے کے لیے اس کی نوعیت کیا ہے؟ کہ وہ سائیڈ بزنس کے نام پر ہم کو دنیا میں ایسا مبتلا کرتا ہے کہ قرآن کی تعلیم اور تعلم کی اہمیت ختم کروا دیتا ہے. سائیڈ بزنس، فارغ وقت میں کیا کرے، دوسرے اوقات میں کیا کرے، وقت اب تو صرف ہمارا 3 گھنٹے کا ہے، کچھ اور دھندا بھی کرو، بزنس کرو، پارٹنرشپ کرو. یہ وزین لہم الشیطان اعمالہم، اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ قرآن کی تعلیم اور تعلم کی اہمیت گھٹتی چلی جا رہی ہے. پہلے وہ سائیڈ بزنس تھا، پھر یہ سائیڈ بزنس ہو جائے گا. قرآن سائیڈ بزنس ہو جائے گا، مدرسہ سائیڈ بزنس ہو جائے گا، اور پھر کیا ہو رہا ہے کہ بھائی فلاں مولوی صاحب نے کاروبار میں لوگوں کا اتنا دھوکہ کر ڈالا، فلاں مولوی صاحب لوگوں کے اتنے پیسے کھا گئے، امت کے دلوں سے اطمینان اعتماد ختم ہو رہا ہے. میں آپ کو پوچھوں، ہمارے پاس کتنا بڑا مشغل ہے، مکتب 3 گھنٹے کا ہے، یہ تیاری کرنے میں کتنا وقت چاہیے؟ مکتب کی تیاری کرنے میں کتنا وقت چاہیے؟ ہمارے اساتذہ یوں سمجھتے ہیں کہ عربی کتاب پڑھانے والے مطالعہ کریں. میں کہتا ہوں کہ مکتب پڑھانے والوں کو مطالعے کی اس سے زیادہ ضرورت ہے. اس لیے کہ عربی پڑھانے والے اساتذہ کے سامنے تو بڑی عمر کے سمجھے سمجھائے طلبہ ہوتے ہیں، اور یہاں تو ایک دم کچا مال، رو مٹیریل ہوتا ہے. ایک تو جو پڑھانا ہے پہلے مجھے سمجھنا ہے، ایک مطالعہ ہے، اور بچوں کو یہ بات میں کیسے سمجھاؤں گا، یہ دوسرا مطالعہ ہے. کہ بچوں کو کیسے یہ بات سمجھاؤں گا، جزم کا بیان، تشدید کا بیان، مد کا بیان، حرکات کا بیان، حروف شناسی کیسے سمجھاؤں گا؟ یہ بڑا مطالعہ ہے، اس کے لیے کوئی فتح الباری آپ کو نہیں ملے گی، عمدۃ القاری نہیں ملے گی، تفسیر کبیر نہیں ملے گی، تفسیر تبری نہیں ملے گی اس کے لیے کہ میں بچوں کے دماغ میں کیسے اتاروں. وہ تو زمانے کے حالات کے اعتبار سے بچوں کو سب سمجھانا پڑتا ہے. یہ سب مثالیں دیتے ہیں نا حروف شناسی میں، انگریزی کے سی کے ذریعے مثال دے مثال سمجھاتے ہیں، کین کے اوپر اوپر والا شوشا کیسے بنائیں گے، بچوں کو کیسے سمجھانے کا، سی کے ذریعے سمجھانے کا انگریزی کے، چونکہ ان کے دماغ میں انگریزی کی شکل بیٹھی ہوئی ہے. تو اس میں تو ہمیں بعض مرتبہ اجتہاد سے کام کرنا پڑتا ہے، بچوں کو سمجھانے کے لیے اجتہاد کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر کام نہیں ہوتا. اور یہ پوری جو ترتیب ہے، نورانی ترتیب جو اس وقت آپ کو بتلائی جا رہی ہے، یہ اجتہادی بھی ہے اور الہامی بھی ہے، ایسے ویسے یہ ترتیب نہیں بنی ہے. پہلے اس میں اجتہاد ہے، محنت ہے، مشقت ہے، راتوں کی، دنوں کی، مہینوں کی، سالوں کی. جب والذین جاہدوا ہوا مسلسل کئی سالوں تک، تو یہ لنا دیا نہم سبو لنا ہو رہا ہے اس وقت، ایسے نہیں ہو رہا ہے. یہ چند سیکنڈوں، منٹوں کا، گھنٹوں کا یہ کام نہیں ہے. پھر لنا دیا نہم سبو لنا کے نتیجے میں الہام ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کہ اس طرح کام آسان ہوگا، اس طرح ہوگا، اس طرح آسانی ہوگی. محنت شر، اس لیے مکتب کے کام میں یہ مت سمجھو کہ مطالعہ نہیں ہے، یا ڈبل مطالعہ ہے. ایک نفس بیان پہلے خود سمجھنا ہے، और दूसरा बच्चों को हम कैसे समझाएंगे, वो तरीके हमें इज्तिहाद से, इलाम से, या एक माहिरीन फन से रुजू करके वो हमें हासिल करना है। इसलिए ये किताब लिखी गई, देखो उसके हर एडिशन में इजाफा हो रहा है। बच्चों को पढ़ाने का तरीका अव्वल एडिशन छपा, दूसरे एडिशन में इजाफा हुआ, फिर तीसरा एडिशन आया, इजाफा हुआ। क्यों? हालात बदलते हैं, जमाना बदलता है, तजर्बात बदलते हैं, मुशाहदात बदलते हैं, तो इजाफा करते ही रहना पड़ेगा। और जितना हम काम में आगे बढ़ेंगे, इसके नए एडिशन में हर मर्तबा इजाफा होता ही जाएगा, किसी एक मंजिल पर रुक नहीं सकते। ये ऐसा काम है। इसीलिए मेरे मुअज्जज अकाबिर उलमा, आप लोग उम्मत का और हमारे सरों का ताज हो। बहुत अदब से दरख्वास्त करूंगा कि अल्लाह ताला बागियों को, काफिरों को, मुशरिकों को, जो खुदा को नहीं मानते उनको भूखा नहीं सोने देते, तो हम अल्लाह की किताब की खिदमत करें तो क्या हमको खुदा भूखा सुलाएंगे? हरगिज नहीं सुलाएंगे। उनका तो ऐलान इंसानों से आगे बढ़कर जानवरों और हशरातुल अर्द कीड़े मकोड़ों के लिए भी है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा, वो तो मुझी जानवरों के लिए भी वादा कर रहे हैं, सांप बिच्छू दरिंदों के लिए। तो हम तो अल्लाह की किताब के खादिम, क्या अल्लाह हमें महरूम करेंगे, भूखे रखेंगे, प्यासे सुलाएंगे? इसीलिए ये वज़ैयन लहुमु शैतानु आमालहुम इस वक्त है हमारे लिए, कि शैतान हमको कहता है कि फारिग वक्त बहुत बचता है, साइड बिजनेस करो, कारोबार करो, आपस में एक दूसरे के पैसे जमा करके इन्वेस्टमेंट करो। ये वज़ैयन लहुमु शैतानु आमालहुम है हमारे तबके के साथ, हमारे तबके मुदर्रिसीन के साथ, तबके मुअल्लिमीन के साथ। ये वज़ैयन लहुम शैतानु आमालहुम, शैतानी गवाह है ये। फारिग वक्त में क्या करोगे बताऊं आपको मैं? एक तो मकतब के सबक की तैयारी, जो दो काम मैंने बतलाए। इस वक्त बड़े शहरों में और छोटे गांवों में, बहुत मोहतात मोहतात अंदाज में कहूं तो उम्मत का 40% तबका वो है जो किसी मकतब या मदरसे से जुड़ा हुआ नहीं है। शहरों की नई कॉलोनियां, झुपड़पट्टियां, सरकारी ऑफिसरों की कॉलोनियां, अपार्टमेंट का एरिया और छोटे छोटे देहात, 40% उम्मत इस वक्त मजमूई इस मुल्क में ऐसी है कि वो उनके बच्चे किसी मकतब या मदरसे से जुड़े हुए नहीं है। वो हमारे फारिग अवकात का मैदान है। जाओ उनको तलाश करो। कमसली गैस, हम तो बारिश की तरह है, हर जगह जाके बरसना पड़ेगा। ये आला किस्म फैस पहुंचाने के कुआं भी है। जब आप उस मकाम पर पहुंच जाओ जो हजरत मौलाना इस्माइल साहब का है, आप अल्ताफ साहब का है, तब फिर आप कुआं बनोगे, लोग आपके पास आएंगे। लेकिन फिर ये भी इस मकाम पर पहुंच के भी बादल की तरह बरसने जा रहे हैं, सब जगह जा जाके बरसे। हमारा काम बादल जैसा जाके बरसना है हमको, बंजर इलाकों को हरा भरा करना है हमको, बंजर इलाकों में हरियाली आवे। बारिश बरसेगी तो बंजर इलाकों में हरियाली आएगी, ये कुरान की 10 आयतों में है। हमें बारिश बरस के बन के जाना है, बादल बन के जाना है। खुद तलाश करो कहां मुसलमान है और उनके बच्चे मकतब में नहीं आते हैं। हमारी मेहनत से एक बच्चे का ईमान, कलमा, कुल हुवल्लाह, कुरान की चंद सूरतें सही हो गई, ये हमारी जन्नत के लिए काफी हो जाएगा, काफी हो जाएगा। जाओ तलाश करो, ढूंढो उम्मत के ऐसे बच्चों को। और ये गलत फहमी हम भी, हमारे अंदर भी थी, उस मालिक का एहसान हुआ कि उसने हमारे अंदर से गलत फहमी दूर फरमाई, उनका एहसान है। 20 साल पहले हम भी यही समझते थे कि हमारा सूरत कोई जरूरत नहीं, ना तो बड़े बड़े दारुल उलूम, बड़े बड़े जामियात मदरसे, हम भी यही सोचते थे। यहाँ तो हर बस्ती में मकतब है, मदरसा है, लेकिन उनकी झुपड़पट्टी में घुसे तो इस वक्त 133 क्लासें चल रही है, जहां नई थी और शुरू हुई। उन सचिन धिस्तान इसकी झुपड़पट्टियों में घुसे, कदम रखा, तो 133 क्लासें इस वक्त चल रही है जहां मकतब नाम की कोई चीज नहीं थी। एक मिसाल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। और जब भी हम लोग तहकीक करते तो सूरत शहर के इलाकों से नई नई रिपोर्टें आती ही रहती है हर मरतबा, ऐसा नहीं कि काम पूरा हो गया। ये सूरत शहर की बात कर रहा हूं, और जिनको समझ में ना आवे साथ चले, हम मुशाहदा करावे। हमारा काम ईमान बिल गैब वाला नहीं, ईमान बिल मुशाहदा वाला है, अल्लाह पर और ईमानियत पर। ईमान बिल गैब, काम में ईमान बिल मुशाहदा, चलो साथ में दिखावे। कहानियां नहीं होती, तो हमारी भी ये गलत फहमी दूर हुई, अल्लाह ने दूर की अपने कर्म से। और मैं बहुत एहतियात से कहूं, मुल्क की हालत 40% बतलाई, शायद मैं कम फीसद बतला रहा हूं। सूबा गुजरात के अंदर भी कम से कम मेरी नाकिस तहकीक में अभी 20-25% इलाके ऐसे हैं कि जहां मुसलमान है मकतब नहीं है। हमारे सूबे की बात कर रहा हूं। और इर्तिदाद नवसारी में नहीं आएगा, गांवों में आएगा। इर्तिदाद हमारी पुरानी मस्जिदें और मकामी जो इदारे वहां नहीं आएगा, झुपड़पट्टियों में आएगा, नए अपार्टमेंटों में आएगा, नई सोसाइटियों में आएगा, जहां दीन की नाम की कोई नकलो हरकत नहीं, इबादत खाना नहीं, मस्जिद नहीं, मकतब नहीं, इर्तिदाद वहां आएगा। वहां ईमान के लुटेरे उसको टारगेट बनाते हैं, हमसे पहले वो पहुंचे होते हैं, ईमान के लुटेरे हमसे पहले पहुंच गए होते हैं वो। तो आप कहते हो ना हमारा फारिग वक्त, तो फारिग वक्त कि ये काम है, बच्चों को पढ़ाने की दो तैयारी करो, और हजार हां हजार लाखों करोड़ों मुसलमान और उनके बच्चे जिनको अलहमद नहीं आती, कुलहल्ला नहीं आती, अलम तरह नहीं आता, बिस्मिल्ला पढ़ना नहीं आता, कलमा पढ़ना नहीं आता, उनको ढूंढो और ढूंढ ढूंढ करके उन पर मेहनत करो। ये हमारा काम होना चाहिए। करोगे ये फिकर? बहुत जरूरत है इस वक्त इसकी, बड़ों में भी छोटों में भी। ये दूसरे सूबों से आकर आबाद होते हैं ना, उनमें बड़ों की अक्सरियत वो है कि जिनको कुछ नहीं आता, क्योंकि जिन सूबों से वो आ रहे उन सूबों में तालीम का कोई निजाम नहीं, आम मकतब की तालीम का। वो आए अपनी फैक्ट्रियां, कारोबार, नौकरी, मुलाजमत, सरकारी पोस्टिंग वगैरह की निस्बत से आए, और बेचारों को कुछ नहीं, वहां कभी मदरसा देखा ही नहीं, अलिफ बे देखी नहीं, कुरान पढ़ा ही नहीं। ये करने के काम है, इसीलिए ऐसा से कमतरी खत्म करो। हम बहुत ऊंचा काम कर रहे हैं, अपने अंदर यकीन पैदा करो। और चार बातें मुख्तसर अर्ज कर दूं आप लोगों को। हम मुदर्रिस हैं। हम क्या है? मुदर्रिस। हमारा नाम क्या है? मुदर्रिस। मुदर्रिस कहते हैं अरबी में दर्स देने वाले को, जो लेसन देवे, सबक देवे, पाठक बनावे, उसको कहते हैं मुदर्रिस। مدرس چار حروف کا مجموعہ ہے، یہ چار حروف کا پیغام ہم یاد رکھے تو انشاءاللہ کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ہماری ذمہ داری ہمیشہ یاد رہے گی. مدرس میں پہلا حرف ہے میم. میم کا مطلب ہے کہ ہر مدرس محنت کرنے والا ہو. پہلا حرف میم، یعنی ہر مدرس کے لیے محنت کرنے والا ہونا بہت ضروری. محنت کے بغیر کبھی کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا. ہم تو بچوں سے محنت کراتے اور ہم کو کچھ نہیں کرنی ہے. ہماری ترتیب میں وہ مدرس کی محنت ہے، بچوں کی کچھ نہیں ہے. یہ اس ترتیب کا کمال ہے. استاد محنتی ہو بچہ کام کر جائے گا. استاد سوچے کہ بچے سے کراؤ بچے سے کراؤ بچے سے کراؤ تو کچھ نہیں ہوگا. استاد محنتی ہو، یہ میم کا تقاضا ہے، محنتی. اور محنت کرو گے تو ثواب ملے گا، اجر ملے گا، نیکی ملے گی اور اللہ آپ کے لیے راستے کھولیں گے، کھولیں گے راستے. تو مدرس کے میم کا خلاصہ کیا؟ محنت. یاد رکھو گے محنت؟ بچوں پر محنت کرو، محنت کے نتیجے میں راستے کھلتے ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو محنت کرے گا ہم راستے کھولیں گے اس کے واسطے، محنت کرنی پڑے گی. ایک سبق ایک بچے کو آج سمجھ نہیں میں آیا، دوسری مرتبہ پڑھاؤ، تیسری مرتبہ پڑھاؤ، اس مثال سے سمجھ میں نہیں آیا، مثال بدل کے سمجھاؤ، لیکن اتنی محنت کرو کہ وہ بچہ پڑھ جانا چاہیے. اور دیکھو ہمیں ذہین اور کمزور کی تمیز ختم کرنی ہے، ہوشیار اور دبے، یہ تمیز ہم کو ختم کرنی ہے. ہر بچہ امت کی امانت، ہر بچہ امانت. بلکہ جو بچہ کمزور ہے، گبی ہے، جس کو ہم ڈوبا کہتے، وہ ہماری محنت کا زیادہ مستحق ہے، وہ ہماری محنت کا زیادہ مستحق ہے. اور ہم نے ہمارے پڑھنے کے زمانے میں ہمارے بعض ساتھیوں کو دیکھا پڑھنے میں کمزور، گبی. ہماری ایک اصطلاح اسٹاف، کمزور گبی طالب علموں کو کہتے ہیں، اسٹاف طالب علم. لیکن ایسے طلبا نے ایسا دین کا کام کیا کہ آج ان کے اساتذہ ان پر رشک کرتے کہ ہمارے شاگرد جنت کا ذریعہ بنیں گے. کہ فارسی میں آپ نے لفظ پڑھا ہوگا، ہر بیشارہ گھما مبر کے خالص شاید کے. ہاں، کسی کونے کو، جنگل کے کسی گوشے کو خالی مت سمجھو، پتا نہیں کہاں شیر سویا ہوا ہو. یہ گبی طلبا میں بھی کون سا دین کا شیر نکلے ہم نہیں کہہ سکتے، خالی مت سمجھو اس کو، محنت کرو. اور جس کو تم گبی کہتے ہو، گبلے کہتے ہو، ڈبے کہتے ہو، ان پر زیادہ محنت کرو. آپ کا کمال کب ہوگا؟ جن کو دنیا گبی کہتی آپ ان کو اچھے نمبر پر لاؤ، یہ آپ کا کمال ہے. آج بھی بارڈولی کے اندر بڑے بوڑھے لوگ موجود ہیں جو 50 کی اوپر کی عمر والے یا 45 کی اوپر کی عمر والے، آپ جا کے پوچھ لو ان کو. ہمارے یہاں مشہور تھا، چونکہ بڑا شہر ہے، کئی مکتب ہے، کئی مدرسی نے تو کہا کہ جو بچہ کسی استاد کے پاس نہیں چلتا، مولوی سلیمان کے پاس بھیج دو، پڑ جائے گا. میرے والد نے 50 سال مکتب پڑھا ہے، پوری بستی میں مشہور. اس وقت کے بھی جو ان کے پاس پڑھے ہوئے بچے، ان کو جا کے پوچھ لو، انڈیا میں ہے، انگلینڈ میں ہے، امریکہ میں ہے، پاناما میں ہے، نیوزی لینڈ میں ہے، دنیا بھر میں ان کے شاگرد پھیل گئے ہیں. پوری بستی میں ہمارے یہ مشہور تھا، آپ بڑے بوڑھوں کو جا کے پوچھ لو، سب یہی کہتے کہ کتنے نہیں چلتا، میں نے مولوی سلیمان بھائی مکی تو پڑ جائے. یہ آپ کا وصف اور کمال ہونا چاہیے. मेहंदी, उस्ताद मेहंदी। और वो कैसे पढ़ाते थे, ये बच्चों का पढ़ाने का तरीका है ना, उसके शुरू में कुछ बातें मैंने उनकी आई है, मैं वहां पढ़ लेना उसमें। दूसरी चीज, दूसरे नंबर पर है दाल। मुदरिस में दूसरे नंबर पर क्या है? दाल का मतलब है उस्ताद दर्दमंद होना चाहिए, दर्दमंदी तलबा की। ये नहीं कि पगार के मुताबिक मैं पढ़ाता हूं। बाज लोग पगार और तालीम में तकाबुल करते हैं कि मल से बढ़िया है, जरमत है, हूं पढ़ाओ ना, कोई होटी मारी बिहारी ना के बोझ कर। तो इखलास कहां से हुआ, कहां से अल्लाह के लिए पढ़ाना हुआ? तो पढ़ाना अल्लाह के लिए थोड़ा ही हुआ, अड़ी तोड़ हजार में हमें गोंधी रखता है, एटलू बोझ है इनके लिए कि 25,000 पगार हो तो बाबा पढ़ा भी है। इखलास कहां से रहा? दर्द मन मुदरिस में दूसरे नंबर पर दाल है। और दाल क्या बतला रहा है कि उस्ताद कैसा होना चाहिए? दर्दमंद होना चाहिए। और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत है। आपने जितने उलमा है उन्होंने शमाइल पढ़ी, शमाइल में क्या पढ़ा हुजूर की सिफत? कान मुतवासिलुल अहजान वदाइमुल फिकरा। अल्लाह के नबी हमेशा उम्मत के दर्द में गम ज़दा रहते थे, उम्मत का दर्द हुजूर को सताता था, ये नबी की सिफत। और हुजूर सबसे बड़े मुअल्लिम है, वो इस तो मुअल्लिमा। तो ये सिफत हमें वहां से लेनी है, दर्द बंदी। हर तालिब इल्म का दर्द हमारे दिल में होवे कि मेरा बच्चा कैसे आगे बढ़े। बल्कि उस्ताद की दर्द मंदी तो ये होनी चाहिए कि बच्चे की कब्रस्तान और जन्नत तक की उस्ताद फिक्र करने वाला होए, तो सही माने में वो दर्द मन है कि भाई ये बच्चा माशाल्लाह नाजेरा में अच्छा चलता है, चलो बच्चे को समझाऊं, उसके माँ बाप को समझाऊं कि इसको किसी दारुलूम में अपने हाफिज बनाने भेज देवे, मौलवी बनाने भेज देवे। उसकी दुनिया की पूरी जिंदगी और आखिरत की फिक्र ये दर्द उस्ताद में हो। और ये नहीं कि मेरे पास पढ़ के चला गया, आप छोड़ दिया उसको, क्या कर रहा है, कहां घूम रहा है, दाढ़ी मुंडवा दी, शर्ट पैंट चालू कर दिया, आवारा बन गया, ड्रग्स वाला हो गया, नशे वाला हो गया। नहीं, आप उस्ताद हो, उसका दर्द आपके दिल में होना चाहिए कि आप पढ़ने का उसका कोर्स 7 साल का पूरा हो गया, बेटा हर इतवार को आना है, बेटा जितनी बातें याद कराई ना वो पढ़ के सुना के जाना, कुरान भी सुनाते रहना बेटा, और याद कर, मैं तुझे थोड़ा थोड़ा और याद कराऊ, कम से कम हफ्ते में एक दिन आना तेरे उस्ताद को मिलने के वास्ते। दर्द दर्दमंद पढ़ाई के जमाने में भी और पढ़ाई के बाद भी उस्ताद दर्दमंद होना चाहिए, फिकर उसकी लगी हुई हो। और दर्दमंदी होगी तो आप अपने पास पढ़ने वाले बच्चों के लिए तहज्जुद में उठ करके रोओगे अल्लाह के सामने। दर्दमंदी ये मौली में कामिल ने हमको सिखलाया कि अबू जहल के लिए हुजूर रोके दुआ करते थे कि नहीं करते थे, खत्ताब के बेटे उमर के लिए हुजूर रोके दुआ करते थे कि नहीं करते थे। उस्ताद के दिल में दर्द होगा तो वो बच्चों के लिए आंसू बहाएगा, दर्द है मेरा बच्चा पढ़ जा रहा है, आगे बढ़ जा रहा है, दर्द मंदी। दो लफ्ज हो गए, मीम से क्या मतलब, मेहनत, दाल से क्या मतलब, तीसरा लफ्ज क्या है मुदरिस में, रा का मतलब है उस्ताद राहनुमा होना चाहिए, रहबर और राहनुमा होना चाहिए। उस्ताद कैसा होना चाहिए? रहबर और रहनुमा होना चाहिए बच्चों का। ये इसी के लिए तैयारी करवाई जा रही है कि आप अपने बच्चों के सही रहबर बनो, सही रहनुमा बनो, इसी की ये मेहनत हो रही है। तो ये 2 दिन के अंदर तो क्या हो रहा है कि आपने एक चीज पढ़ी है ना कि भाई जरा चख तो लो, खावे नहीं तो हजमर, तो बाप कहते ना भाई अभी खाने का मौका, अरे भाई चख लो, सीधी चखेने अच्छा लगे तो खाने आना है। तो हमारा दो दिन का प्रोग्राम चखने का है, खाने का नहीं है, याद रखना। ये प्रोग्राम सिर्फ चखने का है, खाने का। अगर ये चखा और अच्छा लगा तो फिर खाने के लिए हमारा दस्तरखान तैयार है, हम इंशाल्लाह फ्री में खिलाएंगे। दस्तरखान बिछा हुआ है, तैयार है खिलाने के लिए। तो ये तो चखने का मौका है दो दिन में, ये खाने का मौका हो ही नहीं सकता। चखा अच्छा लगा तो अब फिर रुजू करो कि हम कब आवे, 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, फिर बार बार कब आवे हमारी कमी की तलाफी के लिए। साल का चिल्ला लाजिम है ना तबलीग में, हमारे यहाँ साल के 8 दिन लाजिम है कि 8 दिन तो कापुतरा लगाना ही पड़ते हैं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ असातिजा को पहले ये दवा बहुत कड़वी लगती है, कोई तकरुल के लिए आता हम बात करें, उसमें कहते भाई देखो हर साल 8 दिन कापुतरा लगाने पड़ेंगे, दारुल मकातिब में लगाने पड़ेंगे, तो वहीं से वो थोड़े झिझक जाते हैं भाई। तरबियत जहां भी होगी वहां जाना पड़ेगा आपको। तो ये तो चखने का प्रोग्राम है, ये खाने का प्रोग्राम नहीं, याद रखना। सिर्फ चखा रहे हैं आपको दो दिन में कि अच्छा लगे तो आप खाने के लिए आना, और इतना खाना जब तक आपका पेट भर जाए वहां तक खाना। अभी एक जमात थी हमारे महल में तुझिष्ठा होते, तो असातिजा रात को भी लेके बैठे, स्कूल के बच्चों को बुलावे, रात को भी बोर्ड पर पुरुष शनासी की ये सब करे। तो जमात वाले मुझे फिर 4-10 दिन वो रहे चिल्ले की जमात थे, कहने लगे कि मिलना है आपको टाइम। मैंने कहा क्या काम है? तो कहा हमारे गांव का मकतब आपको सौंपना है। अरे सौंपने का क्या मतलब, काम करना है सही, कुरान की तालीम का काम करना है। उस्तादों की तरबियत जरूरी है कि उनको पहले सीखना पड़ेगा कि भाई काम कैसे करने का, बच्चों को कैसे पढ़ाने का। तो उनका कितने दिन चाहिए? मैंने कहा वो आपके उस्ताद पर है, आपके उस्ताद अगर काबिल होंगे लेने की सलाहियत होगी 15 दिन में सीख जाएंगे, 15 साल में भी नहीं सीखेंगे अगर तलब नहीं होगी तो। आपके उस्ताद पर है, हमारे ऊपर नहीं है। चार्जिंग के लिए बैटरी पावरफुल है, आप कितनी जल्दी चार्ज करते हो, बास चार्जर धीरे धीरे करते हैं, बास चार्जर फास्ट करते हैं, मेहनत करें। तो उस्ताद रहबर हो, रहनुमा हो बच्चों के वास्ते, रहनुमाई करे बच्चों की, और रहनुमाई तालीम में भी तरबियत में भी, सिर्फ तालीम नहीं तरबियत में भी। ये तालीमुद्दीन जो हमारा कोर्स है वो तरबियत है कि एक मुसलमान बनके कैसी जिंदगी गुजारने की, अखलाक कैसे होने चाहिए, किरदार कैसा होना चाहिए, जिंदगी मसनून दुआओं वाली कैसी होनी चाहिए। सिर्फ तालीम नहीं है तरबियत भी है, दोनों में रहबरी बहुत जरूरी है। मैं स्कूल से मदरसे में गया था तो मेरा कुर्ता जरा ऊंचा रहता था, बहुत लंबा नहीं होता था घुटने तक का, थोड़ा ऊंचा रहता था। तो शुरू पढ़ने के जमाने से हमारे हजरत मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी दामत बरकात हुमुल आलिया के घर पर जाना आना रहता था। तो एक दिन हजरत ने मुझे कहा तुम्हारा कुर्ता छोटा है, तो तालिब इल्म में ना बहाने तो होते। मैंने कहा हजरत वो कपड़ा जरा छोटा आ गया था इसलिए। तो फरमाने लगे अभी जर भी तू हिवड़ा हो ना इन्हें तो पैया मारा पा ले जाती, पर कुर्तो घुटन हुई लाबो हो जुए। उसी जमाने में जब मैं फारसी अवल अरबी अवल शुरू में पढ़ता था तब तरबियत, आपके पास आने वाले बच्चों का लिबास कैसा है उस पर भी आप नजर रखो कि बेटा ये तू फटी हुई इधर पहन के आया, चल मैं पैसे देता हूं जाके जरा ठिंगड़ा लगवा लेना, केवन लगवा लेना। तो कहेगा उस्ताद तो फैशन वाली पहन है। तो फिर आप उसको समझाओ कि बेटा नबी का तरीका क्या और उसका फैशन का नुकसान क्या, तो समझाओ नबी के तरीके का फायदा समझाओ, फैशन का नुकसान समझाओ। उस्ताद रहनुमा होना चाहिए तालीम में भी तरबियत के अंदर भी। बाल देखो बच्चों के, कैसी स्टाइल के बच्चों के बाल है, उसमें भी उनकी रहनुमाई करो। जरूरत उनको मालूम ही नहीं, बच्चों को छोटे हैं बेचारे, माँ बाप और टीवी से और नेट से जो देखते हैं उसी को सब कुछ समझते हैं। उनको मालूम नहीं कि भाई वो एक तरफ बाल ज्यादा, एक तरफ छोटे, एक तरफ मुंडे हुए, एक तरफ बड़े रखना गुनाह का काम है। इनको मालूम नहीं है, बच्चा है, कच्चा है। आपको बताना पड़ेगा, उस्ताद रहनुमा हो, रहबर हो, तालीम में भी तरबियत में भी। तो तीसरा लफ्ज कौन सा हो गया? रा। और रा का मतलब क्या? रहनुमा और रहबर। चौथा लफ्ज क्या हो गया? सीन का मतलब है उस्ताद सलीकामंद होना चाहिए। उस्ताद कैसा होना चाहिए? सलीकामंद होना चाहिए। उस्ताद की सलीकामंदी बच्चों की जिंदगियों को सलीकामंद बनाएगी। उस्ताद बेसलीका होगा, ये बच्चे पूरी जिंदगी बेसलीका रहेंगे। सलीकामंद उस्ताद होना चाहिए, बहुत जरूरी है। उस्ताद में सलीका होना, सलीकामंदी से ले उस्ताद बच्चों के सामने। मुझे मालूम है एक मदरसे में, चूंकि अपनी बिरादरी है, मैं कहूँ आपको, एक मदरसे में एक दर्जे हिब्ज में तमाम तलबा गुटखा खाते थे। हर तालिब इलम गुटखा खावे, 20-22 तलबा उस्ताद की जमात में सब गुटखा खावे। तो वजह क्या? तो कहा उस्ताद बिंदास सबक में बैठ के गुटखा खावे। दौड़ सुनने का तो कंटाड़ा आता है, ले कुरान सुनने में कंटाड़ा आता है। सुबह 7 से 11 का मदरसा, 4 घंटे का तो कंटाड़ा है। उस्ताद में सबके सामने बैठ के गुटखा खावे, बल्कि गुटखा हो ही नहीं तो बच्चे को ही पैसे दे के जा फलान पर गुटखा लिया हमारा। तो नौसत क्या हुई? उस उस्ताद के पास पढ़ने वाले हर हर तालिब इलम को गुटके की आदत बन गई। आपको मैं यार हूं उन बच्चों के वास्ते। उस्ताद सलीकामंद हो, आपकी जबान भी सलीकामंद होनी चाहिए। आप जो लफ्ज गलत बोलोगे बच्चा दिमाग में वो गलत लफ्ज बिठा देगा, जिंदगी भर नुकसान करेगा उसको। जबान भी सलीकामंद, आपके लिबास भी सलीकामंद, आपकी नकलो हरकत भी सलीकामंद, हर चीज में सलीका हो तो बच्चों में वो सलीका आएगा और बच्चों की जिंदगी बनेगी। मैं मकतब के हमारे असातिजा को एक किस्सा सुनाता हूँ। हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहब कापोत रवि रहमतुल्लाह अलैह का, कि वो एक दिन ऐसा हुआ कि छुट्टी का दिन था तो बच्चे खेलते हैं चंद बच्चे मिलकर, तो एक बच्चा उस्ताद बना और सब बच्चों को पढ़ने बिठाया। वो खेल करने लगे, खेल रहे थे वो, तो जो बच्चा उस्ताद बना वो 2 लकड़ी भी लाए और इधर बच्चे पढ़ रहे, उनको कह रहा है ए डोबा पढ़। इधर एक बच्ची ए डोबी पढ़। तो हजरत मौलाना कह रहे कि मैं इस झूले पर बैठा हुआ था, मौलाना के घर के बाहर झूला था, मैं देख रहा था, अखबार पढ़ रहा था, मैं देख रहा था। मैं समझ गया कि ये उनके उस्ताद का असर है बच्चों में। उस्ताद इनको पढ़ाते पढ़ाते डोबा डोबी के अल्फाज इस्तेमाल करते होंगे, ये उसका असर है। अभी शाम को असर की नमाज में मैंने सदर मुदर्रिस साहब को पूछा कि ये हमारे पोते पोतियां नवासे आते, इनके उस्ताद कौन? तो उन्होंने नाम बताया। फिर उस्ताद साहब की मुलाकात की तन्हाई में, कहा मौल साहब तुम्हें कोयराओं ने डूबा डूबी खेव? तो कहा उन्होंने इकरार कर लिया, वरना मौली लोग जल्दी इकरार करते नहीं थे। क्योंकि मंतिक चाटी हुई होती है, नहीं पढ़ी नहीं चाटी हुई होती है, तो इकरार नहीं करते जल्दी। उन्होंने इकरार कर लिया। तो मैंने कहा आइंदा जरा अल्फाज संभाल के बोलना, आप बच्चों को जो बोलते हो ना बच्चे सीखते आपसे, और दूसरे बच्चों को डोबा डोबी कहते हैं वो सलीकामंद। तो उस्ताद की जुबान भी सलीकामंद, उस्ताद का लिबास भी सलीकामंद, उस्ताद की नकलो हरकत भी सलीकामंद, हर चीज सलीके की होनी चाहिए। तो 4 लफ्ज हो गए। मीम से क्या मुराद है? मेहनती। दाल से क्या मुराद? दर्दमंद। रा से क्या मुराद? रहनुमा। और सीन से मुराद? ये 4 सिफत अपने अंदर पैदा करो, करोगे और उसके लिए अल्लाह से मांगो कि अल्लाह ये 4 औसाब मेरे अंदर पैदा फरमा दे और मेरी मेहनत को तो कबूल कर ले, और बच्चों के लिए दुआ का एहतमाम करो। अल्लाह मुझे और आपको इन कही बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें वाकई माने के अंदर मोहल्ले में कुरान बना देवे, और अल्लाह ताला हम सबको कुरान की तालीम व तालुम पर जो फजाइल है वो हकीकत में अल्लाह दुनिया आखिरत में हमको अता फरमा देवे। मैं तो मुदर्रिसीन को एक बात कहा करता हूँ, भय अल्लाह वाला बनने का अगर कोई बेहतरीन तरीका है तो ये कुरान की तालीम है। कुरान सीखना सिखाना क्या है? अल्लाह वाला बनने का बेहतरीन तरीका। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह कह रहे, वलाकिन कुनु रब्बानीन बिमा कुंतुम तुअल्लिमून अल-किताब व बिमा कुंतुम तदरुसून। अल्लाह फरमा रहे वलाकिन कुनु रब्बानीन बिमा कुंतुम तुअल्लिमून अल-किताब व बिमा कुंतुम तदरुसून। रब्बानी यानी अल्लाह वाले बन जाओ। कैसे बनोगे? किताब कुरान मुराद है यहां। कुरान सीखो, कुरान सिखाओ, तुम अल्लाह वाले बन जाओगे। तो ये तो अल्लाह वाला बनने का बेहतरीन तरीका है। कुरान सीखना सिखाना इस काम को मामूली मत समझो। काश के वक्त की गुंजाइश होती तो और भी बहुत कुछ सुना था। हमारे सिलसिले के बहुत बड़े बुजुर्ग जिनकी निस्बत लगी हुई है हमारे इस इदारे से, कुतबे आलम हजरत मियाँ जी नूर मोहम्मद जिनजानवी रहमतुल्लाह अलैह। ओहो, ये मियाँ जी नूर मोहम्मद कौन थे मालूम है आपको? हमारे सारे बुजुर्गों के पीरों के पीर, हमारे पूरे बुजुर्गों के पीरों के पीर है हजरत कुतबे आलम मियाँ जी नूर मोहम्मद जिनजानवी रहमतुल्लाह। हजरत थानवी किया, हजरत अल्लामा कश्मीरी किया, हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोई किया, हजरत मौलाना कासिम नानोतवी किया, सबके पीरों के पीर है कुतबे आलम मियाँ जी नूर मोहम्मद जिनजानवी। और शेखुल इस्लाम मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह की एक बात उनके लिए सुनाओ। हजरत फरमाते थे कि हिंदुस्तान की सियासी राजधानी अगर दिल्ली है तो हिंदुस्तान की रूहानी राजधानी मियाँ जी नूर मोहम्मद की कब्र मुबारक है। ये लिखा हुआ है किताबों में। हिंदुस्तान की सियासी राजधानी अगर दिल्ली है तो हिंदुस्तान की रूहानी राजधानी हजरत मियाँ जी नूर मोहम्मद की कब्र मुबारक है। इतने बड़े आदमी थे कुतबे आलम मियाँ जी नूर मोहम्मद जिनजानवी। उन्होंने पूरी जिंदगी क्या काम किया? पूरी जिंदगी बच्चों को मकतब में अलिफ बाता पढ़ाई। इतने बड़े अपने जमाने के इमामुल अब्दाल, इमामुल कुतुब थे। पूरी जिंदगी बच्चों को नाजरा पढ़ाया। यूपी में मियाँ जी कहते हैं ये नाजरा पढ़ाने वालों को। नूर मोहम्मद तो नाम है, मियाँ जी वो मकतब पढ़ाने की वजह से है। कुतबे आलम हजरत मियाँ जी नूर मोहम्मद जिनजानी। जिनजान एक बस्ती का नाम है देवबंद सहारनपुर के करीब में, वहां हजरत का मजार है। लोहारी में रहा करते थे, बच्चों को पढ़ाते थे। और वहां जहां आप पढ़ाते थे और जिक्र करते थे, आज पौने 200 साल गुजर गए हजरत के, लेकिन जहां बैठ करके उन्होंने जिक्र किया, कुरान पढ़ाया, वहां आज भी खुशबू निकलती है। जिसको देखना हो जाओ लोहारी और देख के आओ। जिसको देखना हो, खुली दावत देता हूं मैं आपको, देख के आओ जाओ। थाना भवन के करीब में है। ऐसे वैसे ये मामूली काम है। मैं आपको ऐसे नहीं कह रहा हूं, इसलिए वाकिया सुना रहा हूं कि हकीकत में अल्लाह वाला बनने का कोई बेहतरीन तरीका है तो ये कुरान का सीखना सिखाना है। वलाकिन कुनु रब्बानीन बिमा कुंतुम तुअल्लिमून अल-किताब व बिमा कुंतुम तदरुसून। रब्बानी बन जाओ, अल्लाह वाले बन जाओ। किस चीज से बनोगे? कुरान पढ़ो, पढ़ाओ, सीखो, सिखाओ, अल्लाह वाले बन जाओगे। अल्लाह मुझे आपको इसकी कदर अता फरमाए, तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हम सबको इखलास और औसाफ़े सहिया के साथ इस मुबारक खिदमत के लिए कबूल फरमाए। आप हजरात ने ये बातें सुनी, ध्यान से सुनी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे मौलाना नासिर साहब ऐसी सब जद्दोजहद मेहनत करते रहते हैं, इनकी तंदुरुस्ती के लिए दुआ करो। हाँ, बीमार रहते हैं, अगर तंदुरुस्त हो जावे तो और ज्यादा काम हो। अल्लाह ताला कबूल फरमावे। سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.